राघवेंद्र केशव को लेकर बस स्टैंड आ चुका था। वो केशव को लेकर जल्दी से टिकट खिड़की के पास पहुंचा। उसे देखकर वहां मौजूद आदमी खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। रात को यहां पर कौन बैठता है? राघवेंद्र ने सीधे सीधे पूछा। मैं ही रुकता हूं दादा, थोड़ी देर बाद मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है, उसके बाद दूसरा लड़का आएगा। सब ठीक है ना? उसने पूछा। क्या तुम्हें याद है कि वो लोग कितने बजे के आसपास यहां पहुंचे होंगे? राघवेंद्र ने केशव से पूछा। मेरे पास घड़ी नहीं थी, लेकिन वो लोग लल्लन भैया के निकलने के लगभग 2 घंटे बाद वहां से गए थे। राघवेंद्र ने उसी वक्त लल्लन को फोन किया और उसे मेले में जाने का टाइम पूछा। उसने रात के लगभग 11:30 बजे का टाइम बताया। रात के लगभग 1 बजे के आसपास की बात है। राघवेंद्र के बताते ही टिकट काउंटर पर मौजूद आदमी ने अपने दिमाग पर जोर दिया और फिर कहा, उस वक्त ज्यादा लोग आते जाते नहीं है। आप तो जानते हैं कि गांव का एरिया है, तो इस वक्त लोग बाहर निकलना सही नहीं समझते। हाँ, एक पति पत्नी का जोड़ा जरूर था जो जल्दबाजी में मुंबई के लिए निकला था। तुम्हें पक्का विश्वास है कि वो दोनों मुंबई ही गए थे? मेरे पास लड़के की फोटो है, तुम देख बता सकते हो क्या ये वही था? राघवेंद्र ने अपने मोबाइल में देव की फोटो निकालकर उस आदमी को दिखाई। उसने देव को देखकर तुरंत पहचान लिया और कहा, हाँ दादा, यही था। और इसके साथ एक औरत भी मौजूद थी। हमने पूछा भी था कि इस वक्त की रात को कहाँ जा रहे हो, तो लड़के ने कहा कि इसकी माँ बहुत बीमार है। बहुत अच्छा, आज लल्लन की एक गलती की वजह से वो दोनों मुंबई भाग गए। वो मुंबई है, कोई गली का कोना नहीं जो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। अब इतने बड़े शहर में हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? गुस्से में राघवेंद्र ने अपना हाथ टिकट खिड़की पर दे मारा। उसके ऐसा करने पर केशव घबरा गया और थोड़ा दूरी पर खड़ा हो गया। राघवेंद्र ने उसे घूर कर देखा। छोड़ेंगे तो हम तुम्हें भी नहीं, उसने उसे घूर कर देखते हुए बोला। केशव ने अपनी नजरें झुका ली। राघवेंद्र ने अपने सारे आदमियों को उसी वक्त फोन करके मुंबई भेज दिया और साथ ही मुंबई में मौजूद आदमियों को बस स्टैंड पर तैनात कर दिया कि देव और वैदेही के वहां पहुंचते ही वो लोग उन्हें वहां से उठा सके। अगले दिन सुबह जल्दी देव और वैदेही मुंबई पहुंचे। उन्होंने रास्ते में अपने कपड़े बदलकर फॉर्मल वेयर पहन लिए थे। जहां वैदेही ने पहले की तरह ऑफिस सूट पहन रखा था, तो वहीं देव ने पगड़ी बांधकर नकली दाढ़ी मूछ लगा रखी थी। वो बिल्कुल किसी पंजाबी आदमी की तरह लग रहा था। यहां आकर चैन की सांस आ रही है, वहां तो ऐसे लग रहा था कि किसी भी पल राघवेंद्र के गुंडे हमारी जान ले लेंगे, देव ने खुश होकर कहा। मुंबई पहुंचते ही उसकी परेशानी भी हवा में छू हो चुकी थी। धीरे बोलो, खतरा भी टला नहीं है। याद है ना, ऑटो ड्राइवर ने कहा था कि वो उन लोगों के आते ही सब बता देगा। अब तक तो उन्हें सब कुछ पता लग गया होगा। तुम्हें क्या लगता है, राघवेंद्र के आदमी यहां मौजूद नहीं होंगे? वैदेही के कहते ही देव ने अपने होठों पर अंगुली लगा ली। उसने उसी तरह बिल्कुल दबी आवाज में कहा, अच्छा, इसीलिए आपने ड्रेस बदलकर इस लुक में आने को कहा था? हाँ, वैदेही ने उसकी बात पर हामी भरते हुए बोला। लगता है आजकल हमारे ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे, जहां भी जाते हैं नाकामयाब होकर लौट रहे हैं। मुझे डर है कि रिपोर्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। उसकी फिक्र आप क्यों कर रही हैं वैदेही मैम, यशवर्धन सर ने डॉक्टर से बात कर ली थी, वो सब संभाल लेंगे। दोनों बातें करते हुए बस स्टैंड से बाहर आ गए थे। राघवेंद्र के आदमियों ने वैदेही को देखा, लेकिन देव ने पगड़ी बांधकर और नकली दाढ़ी मूछ लगाकर पंजाबी लुक ले रखा था, इस वजह से वो उसे नहीं पहचान पाए। वहां से देव और वैदेही ऑटो लेकर न्यूज चैनल के ऑफिस के लिए निकल गए। वहां मौजूद राघवेंद्र के आदमियों ने उसे फोन किया। क्या हुआ, मिले वो दोनों? फोन उठाते ही राघवेंद्र ने पूछा। नहीं दादा, वो तो नहीं मिले। आपके बताए हुए टाइम के हिसाब से यहां पर एक ही बस आई थी, लेकिन मैंने यहां पर वैदेही रघुवंशी को एक आदमी के साथ देखा। वैदेही जी, उस बस में क्या कर रही थी? राघवेंद्र चौंक कर बोला। वही तो समझ नहीं आ रहा कि उन जैसी बड़ी न्यूज रिपोर्टर उस सस्ती सी बस में क्या कर रही थी। वो क्या आपके गाँव में आई हुई थी क्या? हाँ, इंटरव्यू लेने के लिए आई तो थी, लेकिन चली भी गई, कहकर राघवेंद्र ने फोन कट कर दिया। उसी दिन वो भी फ्लाइट में त्यागी जी के साथ मुंबई पहुंच चुका था। राघवेंद्र के साथ मानव भी उसके साथ आया था। राघवेंद्र के घर पहुंचते ही वो फिर से अपने कामों में लग गया। लल्लन की बेवकूफी की वजह से जो भी हुआ, इस वजह से राघवेंद्र काफी परेशान था। उसे परेशान देखकर मानव उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ दादा, मैं देख रहा हूं जब से आप यहां पर आए हैं काफी परेशान लग रहे हैं। मानव, अगर मैं तुझे किसी लड़की की फोटो दूं और उसका थोड़ा मेकअप वेकअप करके उसे अलग तरीके का करने को कहूं, तो तुम कर सकते हो क्या? हाँ कर सकता हूं, लेकिन आप ये क्यों करवा रहे हैं? अभी कुछ मत पूछ, राघवेंद्र ने कहा और अंदर से अपना लैपटॉप लेकर बाहर आया। उसने वैदेही का अकाउंट निकालकर उसकी एक फोटो मानव के सामने कर दी। मानव हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। आप वैदेही जी की फोटो के साथ? मानव ने अपनी बात पूरी करता उससे पहले राघवेंद्र फिर बोल पड़ा। मैंने कहा ना मानव, अभी कुछ मत पूछ, ये वैदेही रघुवंशी है। हाँ दादा, मैं जानता हूँ कि ये वैदेही रघुवंशी है जो आपका इंटरव्यू लेने के लिए गांव आई थी। आप क्या करने का सोच रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि ये किस इरादे से हमारे गांव में आई थी। तो ऐसा करके इसके चेहरे पर बहुत सारा मेकअप करके इसे बिल्कुल वैसी ही तैयार कर दे जैसे हमारे किसी त्यौहार पर आरती वहीनी तैयार होती है। ओके, तो आप चाहते हैं कि मैं वैदेही की फोटो को प्रॉपर महाराष्ट्रियन लुक दूं? राघवेंद्र ने उसकी बात पर हामी भरी। मानव के मन में कई सवाल चल रहे थे, लेकिन अभी वो चुपचाप राघवेंद्र के बताए हुए काम में लगा हुआ था। उसने कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल की और उसके जरिए वैदेही की फोटो एडिट करके उसे अलग ही लुक दे दिया था। डेस्कटॉप पर वैदेही का चेहरा था और मानव ने उसे बिल्कुल वैसा ही रूप दे दिया गया था जैसे वो राघवेंद्र के गांव में बनकर गई थी। फोटो देखकर मानव ने आंखें बड़ी करके कहा, विद्या सावंत? कौन विद्या सावंत? अरे दादा, इस औरत का नाम विद्या सावंत है और ये हमें मेले में मिली थी। आरती वहीनी इसे जानती है, ये पहले भी हमारे घर पर आ चुकी है। और वो कब? राघवेंद्र ने पूछा। जिस दिन मैं घर पर आया था तब ये हमारे भोज में शामिल होने के लिए आई थी। लेकिन ये वैदेही जी कैसे हो सकती हैं? राघवेंद्र ने गुस्से में लैपटॉप उठाया और उसे नीचे पटक दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया वैदेही आखुवंशी, मेरे ही घर पर आकर मेरी जासूसी कर रही थी। तुम्हें मेरे पीछे किसने भेजा होगा? उसने सोचा। वो काफी गुस्से में लग रहा था, जबकि मानव भी वैदेही का एक अलग ही रूप सामने आने पर हैरान था। राघवेंद्र गुस्से में बाहर जाने लगा। मानव उसको रोकने के लिए उसके पीछे दौड़कर आया। दादा रुक जाइए, इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, हम बैठकर बात करते हैं ना? मानव, तुम अभी बच्चे हो और इन सबसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में कुछ ऐसा ही होता है। मैं जानता हूं कि वैदेही रघुवंशी मुझे कहां मिलेगी। फिलहाल के लिए मेरे पीछे मत आना। राघवेंद्र ने मानव का हाथ झटका और उसी वक्त न्यूज 24/7 इंडिया के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। देव और वैदेही अपने सामान सहित न्यूज चैनल पहुंच चुके थे। नरगिस ने उसे वहां देखा तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन वैदेही ने उस वक्त उससे ज्यादा बात नहीं की और सीधा प्रतीक के केबिन में चली गई। तुम दोनों ठीक तो हो ना? प्रतीक ने उनसे आते ही पूछा। रास्ते में वैदेही ने कॉल पर उसे सब कुछ बता दिया था।
वैदेही ने हामी भरी। दोनों सामने लगे कुर्सी पर बैठ चुके थे। देव और वैदेही दोनों ही चेहरे से काफी परेशान लग रहे थे। कल इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि हम राघवेंद्र को रोक पाएंगे, वैदेही ने निराश होकर कहा। इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद भी एक और चुनाव होगा, हमारे पास तब तक का टाइम और है। डोंट वेरी वैदेही, हम राघवेंद्र को CM कभी नहीं बनने देंगे, प्रतीक ने जवाब दिया। मेरे पास वो कुल्हाड़ी मौजूद है, हम आज ही उसे फॉरेंसिक के लिए भेज देंगे, लेकिन रिपोर्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके सैंपल्स? तुम उसकी फिक्र मत करो, यशवर्धन ने रिपोर्ट और सैंपल्स अपने पास मंगवा लिए हैं, प्रतीक ने उसकी बात काटकर बताया। चलो, इतनी परेशानी में कोई तो गुड न्यूज़ मिली, देव ने खुश होकर कहा। वैदेही ने भी मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। अच्छा, अब तुम दोनों घर जाकर थोड़ा रिलैक्स कर लो, बाकी हम देख लेंगे। रिलैक्स करने का टाइम नहीं है सर, मैंने सोचा है कि शाम तक मैं हाफुस गांव के लिए निकल जाऊं। वहां पर अगर एक भी लड़की राघवेंद्र के रिश्तेदार के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गई तो हमारे पास इस बात का सबूत होगा कि वो अपने रिश्तेदारों के इलीगल कामों में उन्हें सपोर्ट करता है, वैदेही ने कहा। हाँ, और मैंने वहां पर काम करते हुए ठेके के कागज चुरा लिए थे, ये लल्लन के नाम पर है। राघवेंद्र खुलेआम उसे अपना भाई कहकर इंटरव्यूज करवाता है। हम कह सकते हैं कि सब कुछ जानबूझते हुए भी वो अपने मुंह बोले भाई के इलीगल कामों में उसे बढ़ावा दे रहा है, देव ने वैदेही की बात को आगे बढ़ाकर बोला। दोनों साथ काम करते हुए काफी होशियार हो गए हो, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ एक और टीम मेंबर मौजूद होगा, नो रिस्क, एक और। अच्छा, आप काम की बातें छोड़ो, मैंने तुम लोगों के लिए कॉफी और खाना ऑर्डर कर दिया है, कुछ देर तो आराम कर ही सकते हो, प्रतीक ने कहा। देव और वैदेही दोनों ने मुस्कुराकर हामी भरी। काम की बात करने के बाद वो लोग हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। इतने दिनों बाद देव और वैदेही को भी काफी रिलैक्स महसूस हो रहा था। इन सबके बीच राघवेंद्र गुस्से में न्यूज 24/7 के ऑफिस पहुंचा। वो रिसेप्शन के पास जाकर गुस्से में बोला, कहाँ है वैदेही रघुवंशी, मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है। लेकिन सर, मैम तो आउट ऑफ टाउन है, रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने जवाब दिया। ये तो अंदर जाकर पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पर मौजूद है और कौन आउट ऑफ टाउन है, राघवेंद्र ने उसी के अंदाज में जवाब दिया और जबरदस्ती अंदर जाने लगा। रिसेप्शनिस्ट उसको रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ कर आने लगी। राघवेंद्र चिल्लाता हुआ अंदर ऑफिस में घुस रहा था। वैदेही, वैदेही रघुवंशी, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो वैदेही। उसके चिल्लाने की वजह से बाकी का स्टाफ खड़ा होकर उसी की तरफ आ रहा था। कहाँ है वैदेही रघुवंशी? उसने जोर से चिल्लाकर पूछा। बाहर चिल्लाने की आवाज सुनकर देव, वैदेही और प्रतीक दौड़कर बाहर आए। बोलिए, आपको क्या बात करनी है? वैदेही बाहर आते ही बोली। यहाँ है वैदेही रघुवंशी। ये आपने ठीक नहीं किया वैदेही जी, राघवेंद्र ने जवाब दिया। अकेले में बात करें, यही बेहतर होगा। वैदेही ने राघवेंद्र को अपने केबिन की तरफ इशारा किया, वो उस ओर चला गया। वो भी अपने केबिन में उसके पीछे जाने लगी। तभी प्रतीक ने उसे रोकते हुए कहा, पागल तो नहीं हो गई हो वैदेही? जानती हो ना ये कैसा है, और तुम इसके साथ अकेले में मिलने को हाँ कह भी कैसे सकती हो? इसके इलाके में ये शेर था तो हमारे इलाके में हम, इतने लोगों के बीच ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और मैं अच्छे से जानती हूँ कि इसे कैसे संभालना है, वैदेही ने बिल्कुल सामान्य तरीके से जवाब दिया। उसने प्रतीक को जैसे तैसे मनाकर अपने केबिन की तरफ रुख किया, तो वहीं उसके केबिन के अंदर राघवेंद्र अपनी गन लोड करके बैठा था। क्या लगता है रीडर्स, अब आगे क्या होगा?